दिन भर तारीख 6 दिसंबर दिन गुरुवार, मैं हूँ मानसी दास। अमेरिका की गुजारिश पर कनाडा ने हुआवे के अधिकारी को हिरासत में लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने किया इशारा, याचना नहीं अब रण होगा। सवाल ये कि क्या वो एनडीए से बाहर जाएंगे।
बिहार की राजनीति पर फिलहाल इसका कोई बड़ा असर नहीं दिखता। हाँ, कांग्रेस के साथ अगर उपेंद्र कुशवाहा मिल गए तो इसका कुछ फायदा यूपीए को हो सकता है, लेकिन इसमें भी कई अगर मगर हैं।
साथ ही आपको सुनवाएंगे गांधी के बारे में क्या थी बीआर अंबेडकर की राय।
I know him better than most other people because
होंगी आपकी चिट्ठियां और अन्य खबरें भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। चीन की एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे की एक प्रमुख अधिकारी को कनाडा में गिरफ्तार किया गया है। मेंग वांजू नाम की महिला अधिकारी पर अमेरिका ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अमेरिका के ईरान पर लगाए प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। इसी के चलते अमेरिका ने इनके प्रत्यर्पण की मांग की है। चीन ने मेंग की कनाडा में हुई गिरफ्तारी को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि उन्हें रिहा किया जाए। यमन की सरकार और वहां मौजूद हूती विद्रोही समूहों के प्रतिनिधियों के बीच स्वीडन में शांति वार्ता शुरू हो गई है। ये बैठक स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में चल रही है। यमन के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के विशेष दल ने उम्मीद जताई है कि इस बैठक के अच्छे परिणाम सामने आएंगे। वहीं स्वीडन के विदेश मंत्री मार्गोट वॉलस्ट्रॉम ने यमन के दोनों पक्षों से अपील की है कि वे आपस में समझौते के लिए तैयार रहें। स्वीडन के विदेश मंत्री ने कहा,
A catastrophe unfolding in Yemen and we have to stop it.
यमन में चल रहा युद्ध एक आपदा की शक्ल ले चुका है और हमें इसे रोकना होगा। यमन के लोग पिछले कई सालों से शांति वार्ता का इंतजार कर रहे हैं। यमन में मौजूद दोनों पक्षों को मानवीय पहलुओं से इस बारे में सोचना होगा और एक नई राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत करनी होगी। ये थे स्वीडन की विदेश मंत्री मार्गोट वॉलस्ट्रॉम के शब्द। जापान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि उन्होंने अमरीकी नौसेना के दो सदस्यों को बचाने में सफलता पाई है। जापान के तट पर अभ्यास कर रहे अमरीकी नौसेना के दो एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे जिनमें उनके 7 सदस्य शामिल थे। मंत्रालय ने बताया कि जिन दो सदस्यों को बचाया गया है उनमें से एक की हालत स्थिर है, जबकि मंत्रालय ने दूसरे सदस्य के बारे में जानकारी नहीं दी है। जापान में मौजूद अमरीकी राजदूत विलियम हेगर्टी ने इस खोजी अभियान में मदद के लिए जापान प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा,
I'm encouraged by the fact that the United States and Japan have worked so closely together. I want to thank the Japan Self-Defense Force for immediately
मैं इस बात से प्रभावित हूँ कि जापान और अमेरिका इस तरह मिलकर काम कर रहे हैं और इसके लिए मैं जापान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जापान की रक्षा सेना ने तुरंत खोजी अभियान शुरू किया और हमारी मदद की। इसके साथ ही मैं इस दुर्घटना में शामिल सदस्यों के लिए भी अपनी चिंता और संवेदना प्रकट करता हूँ। ये थे जापान में मौजूद अमरीकी राजदूत के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश सरकार ने राजधानी ढाका में मौजूद म्यांमार के राजदूत को समन किया है। इसकी वजह म्यांमार सरकार के एक मंत्री का रोहिंग्या मुसलमानों के संदर्भ में दिया विवादित बयान है। एक समाचार वेबसाइट पर जारी वीडियो में म्यांमार के धार्मिक मामलों के मंत्री रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बोल रहे हैं कि म्यांमार से बांग्लादेश गए रोहिंग्या मुसलमानों को बहला फुसला कर वापस म्यांमार भेजा जा रहा है। पिछले साल से अभी तक म्यांमार के रखाइन प्रांत से करीब 7 लाख रोहिंग्या मुसलमान देश छोड़ चुके हैं। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि चाबहार शहर में हुए एक कार बम धमाके में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये धमाका स्थानीय पुलिस मुख्यालय के नज़दीक हुआ। एक जिहादी समूह अंसार अल फुरकान ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। सिस्तान बलूचिस्तान इलाके में कई सुन्नी चरमपंथी समूह सक्रिय हैं। कंबोडिया में सरोगेट मां के तौर पर काम करने के आरोप में गिरफ्तार की गई 30 से अधिक महिलाओं को रिहा कर दिया गया है। इन महिलाओं को इस शर्त पर रिहा किया गया है कि जिन बच्चों को वे सरोगेसी के तहत में जन्म देंगी उनका पालन भी करेंगी। कंबोडिया प्रशासन ने इन महिलाओं पर मानव तस्करी के आरोप लगाए थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दाश का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमेरिका की गुजारिश पर चीनी तकनीकी कंपनी हुआवेई की एक वरिष्ठ अधिकारी मेंग वांजू को कनाडा में गिरफ्तार किया गया है। मेंग वांजू कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और कंपनी के स्थापना करने वाले सदस्यों में से एक की बेटी हैं। उन्हें 1 दिसंबर को वैंकूवर से गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि इसके बाद उन्हें अमरीका को प्रत्यर्पित किया जाएगा। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए गुरप्रीत सैनी से।
मेंग वांजू पर आरोप है कि ईरान पर लगे अमरीकी प्रतिबंधों का उन्होंने उल्लंघन किया है। मेंग वांजू को हिरासत में लिए जाने पर चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेन शुआंग ने कहा कि इस पर चीन को अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। मैं अभी आपके साथ इस मामले के बारे में पूरी जानकारी साझा नहीं कर सकता। मैं आपको फिलहाल ये बता सकता हूँ कि हमने उनके लिए चीनी दूतावास की मदद की पेशकश की है और इस मामले में अमेरिका और कनाडा से संपर्क किया है। हमने इसके कारण के बारे में पूछा है और उन्हें जल्द आजाद करने की मांग की है। साथ ही हमने उनके कानूनी हकों की रक्षा और उनके साथ मानवीय व्यवहार करने के लिए कहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने बताया कि अब तक उन्हें कनाडा और अमेरिका से किसी तरह का कोई उत्तर नहीं मिला है। मेंग वांजू की गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब चीन और अमरीका के बीच रिश्तों को लेकर तनाव है। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार स्टू वू ने कहा कि ये मामला व्यापार प्रतिबंधों के उल्लंघन तक सीमित हो ऐसा नहीं लगता।
World are preparing to upgrade to 5G wireless service. So what the US is doing is saying, hey, when 5G comes around, there's going to be a lot more things connect to the internet. So right now,
दुनिया भर के देश फिलहाल 5G वायरलेस तकनीक पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अमेरिका कर रहा है वो ये है कि वो कहना चाहता है कि जब 5G नेटवर्क काम करने लगेगा तब काफी चीजें इंटरनेट से जुड़ेंगी और ऐसे में अगर आपके मोबाइल टावर में हुआवेई है तो हो सकता है कि वो इसके जरिए आपकी जासूसी करे। अब तक हुआवेई के खिलाफ सेंधमारी करने या फिर जासूसी करने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन अब वो ये कह सकते हैं कि देखिए हमने इस महिला को पकड़ लिया है जो कंपनी की अधिकारी है और इसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल रहा है। ये थे वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार स्टू वू। इधर दूसरी तरफ अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 5G नेटवर्क पर हुआवेई कंपनी के बनाए सामान का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन ब्रिटेन में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले टेलीकॉम नेटवर्क बीटी ने इस सप्ताह कहा था कि उसने अपने 5G नेटवर्क पर कंपनी का सामान इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। हुआवेई ने कहा कि उन्हें मेंग वांजू पर लगे आरोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और मेंग ने कभी कुछ गलत किया हो ऐसा उन्हें कुछ नहीं पता।
कनाडा का कहना है कि शुक्रवार को मेंग वांजू की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी। और अब कार्यक्रम में रुख बिहार का। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज इस ओर इशारा किया कि वो एनडीए से खुश नहीं हैं। उन्होंने भाजपा और जदयू की आलोचना की, बागी तेवर भी दिखाए, लेकिन कहीं भी साफ साफ एनडीए से बाहर जाने की बात नहीं की। सुनिए मोतिहारी से हमारे सहयोगी नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट।
अगले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा किसके साथ होंगे, एनडीए या यूपीए? उपेंद्र कुशवाहा के 1 घंटे लंबे भाषण के बाद भी इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि रालोसपा के मोतिहारी में हो रहे चिंतन शिविर के आखिरी दिन पार्टी प्रमुख एनडीए से अलग होने का ऐलान करेंगे, मगर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने संबोधन में एक बार भी ये नहीं कहा कि वो एनडीए से अलग हो रहे हैं। हालांकि कुशवाहा ने भाजपा पर धर्म और जाति पर आधारित राजनीति करने के आरोप लगाए।
जो स्थिति थी 15 साल पहले, कई मामलों में हम पीछे गए। पॉलिटिकल पार्टी का काम है जनता के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। पॉलिटिकल पार्टी का काम है गरीब लोगों की आंखों का आंसू पोंछना। पॉलिटिकल पार्टी का काम मंदिर बनाना और मस्जिद बनाना नहीं, लेकिन जानबूझकर चुनाव के समय ऐसी कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस रवैया का सख्त विरोध करती है।
संबोधन के दौरान कुशवाहा ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और दिनकर की पंक्तियों को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की, बहुत कोशिशें की, पर किसी ने उनसे बात तक नहीं की।
दिनकर के शब्दों में हम कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण ने कहा था, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष बना दीजिए।
उनके संबोधन के बाद बीबीसी ने इस पर भाजपा की राय जाननी चाहिए तो प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा,
थोड़ा सा मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को धीरज रखना चाहिए और दिनकर जी की पंक्तियों को अपने तरीके से मैं कहूंगा, यही कहूंगा कि धैर्य मनुष्य जब खोता है तो विनाश की छवि दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात कि उपेंद्र कुशवाहा जी आज की तारीख में जब केंद्र में माननीय मंत्री है, हम कैसे कह सकते हैं कि वो एनडीए में नहीं है।
ऐसे में पूरी चर्चा ने अब दूसरा मोड़ ले लिया है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। 10 दिसंबर को उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद ही शायद कोई फैसला हो और तब तक हमें भी इंतजार करना होगा। नीरज प्रियदर्शी, बीबीसी हिंदी, पटना।
उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी तो दिखाई लेकिन कोई घोषणा नहीं की। ऐसे में माना जा रहा है कि अब बस ऐलान भर बाकी है। लेकिन क्या एनडीए से उनका बाहर जाना बिहार की राजनीति पर असर डाल सकता है? अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर से।
देखिए, इस सवाल के या कहें कि जवाब के तीन पहलू हो सकते हैं। एक जुड़ा है स्वयं कुशवाहा से, दूसरा नीतीश कुमार से और तीसरा राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस गठबंधन से जुड़ा हुआ है। पहले ये है कि बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक वजन मेरे ख्याल से वो घटा ही है और ये सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष यानी कोयरी कुशवाहा के नेता बनकर रहे हैं और अपने इसी जाति बल को भुनाते भी हैं शुरू से ही। इसलिए जो भी बड़ी पार्टी इन्हें अपने गठबंधन में जोड़ती है तो उनको लोभ होता है कुशवाहा वोट बैंक। अब सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर कुशवाहा समाज का कितना बड़ा हिस्सा वोट करता है। मेरे ख्याल से ये हिस्सा बहुत बड़ा नहीं है बल्कि कई हिस्सों में बटा है, इसलिए बिहार की राजनीति पर फिलहाल इसका कोई बड़ा असर नहीं दिखता। हाँ, लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के साथ अगर उपेंद्र कुशवाहा मिल गए तो इसका कुछ फायदा यूपीए को हो सकता है, लेकिन इसमें भी कई अगर मगर हैं। तो मेरी समझ में ये झटका खुद कुशवाहा के लिए ज्यादा और बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए कम है।
जी, और अगर हम एनडीए की बात करें तो बिहार में ये बात हर किसी को पता है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों की आपस में इतनी बनती नहीं और बीजेपी के लिए उनके करीबी नीतीश कुमार अधिक है ना कि उपेंद्र कुशवाहा। तो ऐसे में इस पूरे प्रकरण में आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की कितनी भूमिका रही?
देखिए, इस पूरे एपिसोड का केंद्रीय पात्र है नीतीश कुमार। कुशवाहा नीतीश की पुरानी दोस्ती के बाद जो दोनों में सियासी दुश्मनी हुई वो दिन ब दिन बढ़ती ही गई। नीतीश के लिए तो उपेंद्र कुशवाहा नाकाबिले बर्दाश्त हैं। केंद्र में बीजेपी के साथ कुशवाहा रहे जरूर लेकिन बिहार में नीतीश खेमा को वो चुभते रहे हैं हमेशा। इसलिए जेडीयू बीजेपी एलजेपी गठबंधन की सरकार में जगह भी नहीं मिली। तो ऐसे समझिए इसे कि जब नीतीश कुमार ठान ही चुके थे कि वो किसी भी सूरत में उपेंद्र कुशवाहा मामले में समझौता कर नहीं सकते तो बीजेपी के पास चारा ही क्या था। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा बयानबाजी करने लगे थे उससे खटास और बढ़ गई और इसलिए अमित शाह ने नीतीश कुमार से मिलकर लोकसभा चुनाव में सीटों पर बराबर बराबर की हिस्सेदारी तय कर ली। और सच पूछिए तो उसी दिन एनडीए से कुशवाहा का रिश्ता टूटने का साफ संकेत मिल गया था।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिजनों ने गुरुवार को यानी आज सुबह लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव मदद और न्याय का भरोसा दिलाया। पूरी जानकारी के साथ ये रिपोर्ट सुनिए समीरात्मज मिश्र की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सुबोध कुमार के परिजनों को मिलने के लिए लखनऊ बुलाया था। सुबोध कुमार की पत्नी अपने दोनों बेटों और अपनी बहन के साथ मुख्यमंत्री से मिलने गईं। करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबोध कुमार के बड़े बेटे श्रेय प्रताप सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है।
आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, पूरा परिवार मिला और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा, सही न्याय मिलेगा और जो भी आरोपी है इस प्रकरण के पीछे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारे परिवार के साथ हैं और हमेशा रहेंगे।
सुबोध कुमार के परिजनों को मुख्यमंत्री से मिलवाने एटा के प्रभारी मंत्री अतुल गर्ग और विधायक सतपाल राठौर ले गए थे। बाद में मंत्री अतुल गर्ग और राज्य के डीजीपी ओपी सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुबोध के परिजनों को सरकार ने हर संभव मदद देने और न्याय का भरोसा दिलाया है। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से और पूरे सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि परिवार एक अभिन्न अंग बनकर रहेगा और इन दोनों बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का खर्च नहीं होगा। इस सरकार की ओर से 40 लाख रुपए उनके परिवार को मिलेगा और 10 लाख रुपए उनके माता पिता को मिलेगा। और मैंने अपनी ओर से पुलिस मुखिया होने के नाते अपनी ओर से ये आश्वासन दिया है कि दोनों बच्चों को जो भी इनफॉर्मल वे में जो सहायता दी जाएगी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए या मेंटोर के लिए, वो मैं संबंधित एसएसपी को निर्देश दूंगा कि उन्हें मिलता रहे।
प्रभारी मंत्री अतुल गर्ग ने मीडिया को बताया कि एटा जिले में सुबोध कुमार के पैतृक घर जैथरा कुरावली गांव जाने वाली सड़क का नाम इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा गांव के एक इंटर कॉलेज का नाम भी उनके नाम पर होगा। अतुल गर्ग ने बताया कि इन सभी घोषणाओं पर तत्काल अमल के निर्देश दिए जा चुके हैं।
चर्चा में जब ये विषय आया कि इनके ऊपर कुछ शिक्षा का लोन है और कुछ मकान का लोन है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो दोनों लोन को जो करीब 25-30 लाख रुपए का है उसे सरकार की तरफ से चुकाएंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अतुल गर्ग परिजनों को लेकर सीधे एटा के लिए चले गए। सुबोध कुमार बुलंदशहर में तैनात थे और 3 दिन पहले गोकशी के संदेह में भड़की हिंसा के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। घटना की निष्पक्ष और तेज जांच और दोषियों को कठोर से कठोर दंड देने का मुख्यमंत्री और डीजीपी ने परिवार को भरोसा दिया है, लेकिन इस घटना के मुख्य अभियुक्त की 3 दिन बाद भी गिरफ्तारी न हो पाना इन दावों और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर रही है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार बीते कल थम गया है। चुनाव प्रचार में इस बार पारंपरिक सामान को खरीदार नहीं मिले। व्यापारी इसके लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार बता रहे हैं। कुछ इसके लिए चुनाव आयोग की सख्ती के साथ साथ जीएसटी को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुनिए हमारे सहयोगी नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
कोई एक पखवाड़े तक चले सघन प्रचार में शोरगुल और सभाजल से तो खूब हुए, लेकिन झंडे, बैनर, बेज, बिल्ले और पोस्टर खरीदारों को तरस गए। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अपना सामान समेट रहे एक व्यापारी ने इसकी वजह बयान की।
आजकल सोशल मीडिया का जमाना चल गया है, प्रचार हाईटेक हो चुका है सोशल मीडिया के ऊपर। झंडा पोस्टर वगैरह में किसी का कोई रुझान नहीं है। पहले तो जैसा समय था उस हिसाब से झंडा, पोस्टर, बिल्ला इनकी काफी डिमांड रहती थी, हर एक आदमी को उसकी आवश्यकता रहती थी। लेकिन अब हाईटेक होने की वजह से चुनाव ऑनलाइन हो गया सारा, एक किस्म से हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, प्रचार सामग्री का इतना रुझान नहीं है।
व्यापारियों ने अपने सामान की नुमाइश की और खरीदारों का इंतजार करते रहे। जयपुर में एक व्यापारी गुलाम दस्तगीर कहते हैं, जीएसटी के कारण बिक्री बहुत कम हुई है।
1/4 भी नहीं बिकी, वजह जीएसटी मेन है। सारे मालों पे जीएसटी लग रही है जो कास्टली पड़ रही है। हम तो इलेक्शन का सारा सामान रखते हैं, सभी पार्टियों के रखते हैं हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं इसका, जो भी हुआ है। लेकिन हम लोगों का ये पिछले सालों से चौथाई पे आ गए हम लोग।
प्रचार में गली मोहल्ले उस पुराने मंजर को तरस गए जब उत्साहित बच्चे बिल्ले लटकाए गलियों में घूमते थे। इस बार राज्य में कोई 2000 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में है, पर प्रचार सामग्री की वैसी बिक्री नहीं हुई। एक व्यापारी अर्पित अग्रवाल कहते हैं,
ट्रेडिशनल तरीकों की बजाय लोग दूसरे तरीके इस्तेमाल करने लग गए हैं, उससे भी काफी फर्क पड़ा है। इसमें काफी सामग्री होती है जैसे झंडे, दुपट्टे, टोपिया, पोस्टर, बैनर, कटआउट, स्टिकर, बैच, अलग अलग तरीके की काफी वेरायटी होती
है। ये वो प्रचार सामग्री है जो लंबे अरसे तक दरो दीवार और सभा जुलूसों में अपनी मौजूदगी से चुनावी माहौल बनाती रही। वक्त बदला तो प्रचार में प्राण डालने वाली यह सामग्री अब कदरदान को तरस गई है। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
बीबीसी के खजाने से हम आपके लिए लाए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साक्षात्कार, जो उन्होंने साल 1955 में बीबीसी को दिया था। महात्मा गांधी के साथ अपने संबंधों और मतभेदों पर उन्होंने बात की थी, आप भी सुनिए।
I met him first, say, in 1929, through the intervention of a friend of mine, common friend, who asked Mr. Gandhi to see me, you see. And so Mr. Gandhi wrote to me, saying that he would like to see me. So I went and saw him. That was just before going to the round table conference.
मैं एक कॉमन फ्रेंड के जरिए पहली बार साल 1929 में मिस्टर गांधी से मिला था।
जब उस दोस्त ने गांधी को मुझसे मिलने की सलाह दी। इसके बाद गांधी ने मुझे पत्र लिखकर मिलने की इच्छा जताई और मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से ठीक पहले उनसे मिलने गया था। फिर वो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए, पहले में नहीं आए थे, वो 5-6 महीने के लिए वहाँ थे। जाहिर है दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाँ मेरी उनसे मुलाकात भी हुई और आमना सामना भी हुआ। फिर इसके बाद पूना पैक्ट पर दस्तखत होने के बाद उन्होंने फिर मुझे मिलने के लिए कहा। मैं उनसे मिलने गया, उस समय वो जेल में थे। इतनी बार मैं मिस्टर गांधी से मिला हूँ और हमेशा ये कहता हूँ कि मिस्टर गांधी से मैं विरोधी की तरह मिला हूँ, इसीलिए मैं उन्हें दूसरों से कहीं ज्यादा और बेहतर तरीके से जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे जहरीले दांत दिखाए हैं। मैं उस इंसान के भीतर झांक कर देख पाया जबकि दूसरे वहां सिर्फ भक्त की तरह जाते थे और कुछ नहीं देख पाते थे। वे वही बाहरी छवि देखते थे जो उन्होंने अपनी महात्मा की बनाई हुई है, लेकिन मैंने उनका मानवीय रूप देखा है बिल्कुल साफ। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैंने गांधी के साथ जुड़े रहे लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से उन्हें समझा है।
And so I say that I understand him better, you see, than most of the people who have associated themselves with him can say.
जो आपने देखा उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
Well, I must say at the outset that I feel quite surprised, you see, at the interest which the outside world, Western world particularly, seems to be taking in Mr. Gandhi. I cannot understand that.
अगर मैं साफ बोलूं तो इस बात पर काफी हैरानी होती है कि सभी, खास तौर से पश्चिमी जगत, मिस्टर गांधी में इतनी दिलचस्पी लेता है। मुझे ये सब समझने में इसलिए परेशानी होती है कि जहाँ तक भारत की बात है, वो इस देश के इतिहास में एक हिस्सा भर है, कोई युग निर्माण करने वाले नहीं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी हैं। जो यादें बची हैं वो इसीलिए क्योंकि कांग्रेस उनके जन्मदिन या जीवन से जुड़े किसी खास दिन पर छुट्टी देती है। हर साल 7 दिन के लिए कोई न कोई आयोजन किया जाता है, जिस वजह से वो यादें दोबारा ताजा हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये यादें बनाने का कृत्रिम तरीका ना अपनाया जाता तो गांधी को कब का भुलाया जा चुका होता।
were not given, I think Gandhi would be long, long forgotten.
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर बीबीसी के खजाने से ये थी एक खास पेशकश। और अब बात आपकी राय की, यानी आपके खतों की।
आपकी राय। आज आपकी चिट्ठियों के साथ हाजिर हूँ मैं मोहनलाल शर्मा, और मेरे साथ मुस्कुराती हुई मौजूद हैं सूर्यांशी पांडे। सूर्यांशी, ये लगातार तीसरा मौका है जब मैं खतों का जवाब दे रहा हूँ और आप मुस्कुराती हुई खत पढ़ रही हैं।
और ये जुगलबंदी ऐसे ही चलती रहे।
वाह, क्या बात है। आज सिलसिला कहाँ से शुरू कर रहे हैं?
आज सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसे नाम से जो आपके नाम से थोड़ा सा तो मिलता है, बट ये है मदन लाल।
अरे वाह, क्या बात है।
मदन लाल लंबोरिया राजस्थान से ये लिखते हैं कि दुनिया जहां में वात्सल्य राय ने रूस, यूक्रेन और पश्चिमी देशों के संबंधों के बारे में पूरी जानकारी दी, दिलचस्प जानकारी थी और ज्ञानवर्धक थी। और साथ ही साथ ये लिखते हैं कि सरप्रिय सांगवान का कार्यक्रम तो अच्छा है, लेकिन नमस्कार भारत एवं दिनभर में वे मुख्य समाचार सुनाते समय अपनी आवाज को वो धार नहीं दे पाती।
देखिए, जहाँ तक दुनिया जहान कार्यक्रम की बात है तो दुनिया जहान कार्यक्रम जो होता है वो समसामयिक विषयों का कार्यक्रम है, और समसामयिक विषयों में भी विदेशों में क्या कुछ घट रहा है उसकी हम बारीक पड़ताल करते हैं, और उसके बाद बड़ी मेहनत से, लगन से ये कार्यक्रम बनाया जाता है। और अगर इसमें हमारे प्रस्तुतकर्ता सफल हो रहे हैं तो ये वाकई एक उपलब्धि वाली बात है। जहाँ तक सर्वप्रिया सांगवान के आपने प्रस्तुतिकरण की बात की है तो बहुत अभ्यास और बहुत समय है चीज़ों को समझने के लिए और वो धार को लाने के लिए। सर्वप्रिया सांगवान अभी हाल ही में अब कार्यक्रम पेश करना शुरू किया, और वक्त निकलने दीजिए, जो चीज़ें आप कह रहे हैं वो भी आ जाएगी।
आगे चलते हैं तो लक्ष्मण दास शर्मा जी का पत्र देखने को मिल रहा है, नारनौल हरियाणा से। वो लिखते हैं और वो लिख रहे हैं कि बीबीसी की विश्वसनीयता जो जग जाहिर है, बीबीसी जो खबर प्रसारित करता है वो निष्पक्ष होती है, और मुझे बीबीसी इस वजह से बहुत अच्छा लगता है। और वो
यही हमारा उद्देश्य भी है और मकसद भी यही है कि विश्वसनीय खबरों को विश्वसनीय तरीके से संपादकीय मानदंडों पर कसा जाए खबरों को, और उसके बाद आप तक प्रसारित की जाए। और हमारी कोशिश हर प्रस्तुतकर्ता की यही होती है कि वो ऐसा लगातार करते रहें। तो ये तो हमारे बारे में बात है।
हाँ, अब मैं आपको अगर बताऊँ ना तो ईमेल मोहनलाल जी जितने भी आए हैं वो सारे आदर्श राठौर द्वारा दुनिया जहाँ जो फ्रांस में डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जन आंदोलित हुआ उस पर आए हैं, और या तो आए हैं वात्सल्य राय द्वारा जो दुनिया जहाँ प्रस्तुत किया गया था रूस यूक्रेन और पश्चिमी देशों के संबंधों पर। तो मैं इनका एक साथ नाम ले लेती हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल।
गणेश प्रसाद हुजदार है, उन्होंने लिखा है। उसके बाद गुड्डू गौतम जो मोतिहारी बिहार से लिखते हैं वो भी आदर्श राठौर की तारीफ करते हैं। गौतम दत्ता ने भी दुनिया जहां पर तारीफ की है, आदर्श राठौर की तारीफ की है। सादिक आजमी ने भी आदर्श राठौर की तारीफ की है। राहुल कुमार की एक शिकायत है, ये लिख रहे हैं कि मेरा ये दूसरा पत्र है जो शायद पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन देखिए हमने पढ़ दिया है।
पढ़ दिया। हाँ। और मेरे ख्याल से अब इनकी शिकायत दूर हो गई होगी कि इनका पत्र शामिल नहीं हुआ। रही बात आदर्श राठौर के फ्रांस में जो डीजल कीमतें बढ़ी हैं उसके विषय में जो उन्होंने कार्यक्रम पेश किया था दुनिया जहां, उसकी काफी तारीफ आई है। दरअसल जो हमारा श्रोता है वो भारत से चीजों को जोड़ कर देखता है, और भारत में भी जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर पुराने समय में भी आंदोलन होते रहे हैं, और ये एक ऐसा विषय है जो कि हर किसी से जुड़ा हुआ होता है, और विषय को समझते हुए उन्होंने ये दुनिया जहान पेश किया जिसको कि तमाम लोगों ने सराहा, तो इसके लिए वाकई आदर्श राठौर बधाई के पात्र हैं।
और यहाँ पर अब विदेश से एक मेल आया है जो रूबिन ने लिखा है नॉर्थ कैरोलिना यूएसए से, और ये लिख रहे हैं कि आपने कुछ ऐसे न्यूज रीडर्स को पढ़ने की इजाजत दे दी है जिनकी जो पढ़ने की शैली है वो बहुत ही मोनोटोनस है, गलतियां करते हैं हेडलाइंस पढ़ने में भी, तो मैं तो ये कहूंगा कि पहले आप उनको ट्रेन करें और उसके बाद उन्हें ऑन एयर करें।
तो रूबिन, ऐसा है कि हमारे तमाम प्रस्तुतकर्ता अभी नए हैं और वो इस विधा को अपना रहे हैं, और देखिए जहां तक गलतियों की बात है, जब तक गलतियां होंगी नहीं तब तक वो सीखेंगे कैसे। तो कुछ गलतियां तो ऐसे भी माफ कर देनी चाहिए कि भाई अभी शुरुआत है और नई चीजें सीखी जा रही हैं, लेकिन इस दिशा में पूरा प्रयास किया जाता है कि हमारी ओर से गलतियां न की जाए, और अगर उनकी संभावना बनती भी है तो उसे भी शून्य कर दिया जाए।
और फेक न्यूज को शून्य करने की जो हमारी एक जिसे कह सकते हमने प्रण लिया है उसकी तारीफ करते हुए रफीक अब्राहम पारकर ने ये मेल लिखा है, और ये कह रहे हैं कि आजकल आपकी वेबसाइट पर फेक न्यूज के पोस्टमार्टम के लिए जो एकता न्यूज रूम में के जरिए जो फेक न्यूज की के लिए काम हो रहा है वो काफी सराहनीय है।
दरअसल bbchindi.com पर एकता न्यूज रूम की ओर से बहुत सारी खबरों की पड़ताल की जा रही है, और इस समय जो समाज में या व्हाट्सएप पर या जो बाकी ग्रुपों में हर बहुत तरह की फर्जी खबरें चलती हैं या फोटोग्राफ चलते हैं उसकी हम पड़ताल करते हैं और बताते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई और कहां तक ये फेक है। तो अगर इस दिशा में हमारा प्रयास कामयाब हो रहा है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, और कार्यक्रम में अब इतना वक्त नहीं है कि हम और चिट्ठियों को शामिल कर पाएं, बस इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपकी चिट्ठियों के साथ। तो मोहनलाल शर्मा और सूर्यांशी पांडे को विदा दें, और चलते चलते एक बार पता फिर से बता दें, आपकी राय बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब वक्त है खेल की दुनिया का हाल जानने का। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने चेतेश्वर पुजारा के शतक के दम पर 9 विकेट पर 250 रन का स्कोर बना लिया है। मार्च में बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बाद ऑस्ट्रेलिया पहली बार घरेलू टेस्ट सीरीज खेल रही है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन टीम इसका लाभ नहीं उठा सकी और शुरुआती बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को शुरुआत में एक के बाद एक झटके दिए, विकेट गिरते रहे और 86 रन बनाने तक आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट गई। कप्तान विराट कोहली का कैच उस्मान ख्वाजा ने गली में शानदार गोता लगाते हुए लपका, लेकिन इसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने सधी हुई बल्लेबाजी की और टिक कर खेला। ऑस्ट्रेलिया के लिए कमिंस, हेजलवुड, लॉयन और स्टार्क ने 2-2 विकेट लिए। दूसरे दिन का मैच कल होगा और पिच पर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह दिखेंगे। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। चीन की एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे की एक प्रमुख अधिकारी को कनाडा में गिरफ्तार किया गया है। मेंग वांजू पर अमरीका ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अमरीका के ईरान पर लगाए प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। यमन की सरकार और वहां मौजूद हूती विद्रोही समूह के प्रतिनिधियों के बीच स्वीडन में शांति वार्ता हो रही है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने अमरीकी नौसेना के 2 सदस्यों को बचाने में सफलता पाई है। जापान के तट पर अभ्यास कर रहे अमरीकी नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे जिसमें उनके 7 सदस्य शामिल थे।
बांग्लादेश सरकार ने राजधानी ढाका में मौजूद म्यांमार के राजदूत को समन किया है। इसकी वजह म्यांमार सरकार के एक मंत्री का रोहिंग्या मुसलमानों के संदर्भ में दिया विवादित बयान है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत सवेरे 6:30 बजे। तब तक आपके साथ है बीबीसी हिंदी का .com पन्ना। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।